भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता चौथा स्कंद नौवा अध्याय ध्रुव महाराज का घर लौटना श्लोक संख्या 63 उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तं मधुव्रतैः। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे जिनमें स्वर्गलोक से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजार करते मदमत्त भौरे थे। तात्पर्य, इस श्लोक में अमर द्रुमयी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है स्वर्ग से लाए गए वृक्षों से। स्वर्गलोक को अमरलोक कहा जाता है, जहाँ देर से मृत्यु होती है, क्योंकि देवताओं की गणना के अनुसार वहाँ के लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जहाँ हमारे 6 मास वहाँ 1 दिन के तुल्य होते हैं। स्वर्गलोक में देवता मासों वर्षों तथा 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, और जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये सारे कथन वैदिक साहित्य में प्राप्त हैं। जिस प्रकार वहां मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष भी। निस्संदेह इस पृथ्वी पर भी कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो 1,000 वर्ष तक रहते हैं, तो फिर स्वर्ग के वृक्षों का क्या कहना। उन्हें कई 10,000 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, और कभी कभी, जैसे कि आज भी प्रचलित है, ये वृक्ष दूसरे स्थानों पर भी ले जाए जाते हैं। अन्यत्र कहा गया है कि जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ स्वर्ग गए थे, तो वे अपने साथ स्वर्ग से पारिजात वृक्ष पृथ्वी पर लेते आए। इसके लिए कृष्ण तथा देवताओं में युद्ध भी हुआ। यह पारिजात कृष्ण के महल में लगाया गया, जिस पर सत्यभामा का अधिकार था। स्वर्गलोक में फूल तथा फल के वृक्ष श्रेष्ठ होते हैं। वे अत्यंत मनोहर तथा स्वादिष्ट होते हैं, और ऐसा लगता है कि महाराज उत्तानपाद के महल में ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष थे। अनुवाद को दोहराइएगा। कृष्ण तो ध्रुव महाराज वन में 6 महीने तपस्या करने के पश्चात घर लौट गए हैं। भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात भगवान ने अपने दिव्य शंख से ध्रुव महाराज के सर का स्पर्श किया, उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और उनको उपदेश देकर अदृश्य हो गए, और ध्रुव महाराज तत्पश्चात अपने राज्य में लौट आए भगवान के आदेश के अनुसार। और जब वो लौट कर आए तो सारे राज्य में हर्ष उल्लास मनाया गया। हर्ष उल्लास से सभी ने उनका स्वागत किया, यहां तक कि उनकी भी माता सुरुचि ने भी प्रेम से आलिंगन किया। बहुत पश्चाताप हुआ सुरुचि देवी को कि मैंने ध्रुव महाराज से इतना बुरा व्यवहार किया। और इस प्रकार से सारे राज्य के जो निवासी हैं, बड़े ही आनंद से उनका स्वागत करने लगे। जिसका वर्णन हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद का महल किस प्रकार का था। महल का वर्णन किया जा रहा है इन श्लोकों में, और पढ़कर हमें आश्चर्य होगा क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य आजकल नहीं दिखाई पड़ता है। उस काल में जो ऐश्वर्य था वो वास्तव में ऐश्वर्य था। वहां पर सोने, हीरे, मोती, इन सब चीजों की, दिव्य रत्नों की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि रामायण में बताया जाता है कि रावण की जो लंका थी, लंका के चारों ओर जो दीवार, बड़ी बड़ी दीवार जो खड़ी हुई थी, वो दीवार किस चीज के बने हुए थे? पत्थर के नहीं, सोने के, शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड। कल्पना कर सकते हैं, आजकल हम सोने की कीमत औंस या ग्राम के हिसाब से करते हैं। किसी ने अमुक इतने ग्राम खरीद लिए तो बहुत अमीर माना जाता है, लेकिन वहां तो दीवारें ही सोने की थी। और कितने बड़े थे दीवारें? सारे लंका के शहर को, राज्य को घेर लिया था। और ये लंका शहर जो है, ये त्रिकूट पर्वत के ऊपर समुद्र के बीच में था। त्रिकूट पर्वत का नाम तो आपने सुना है भागवत में भी। तो इतने, इतना सोना, और लंका के भीतर भी सब जगह सोना, दिव्य रत्न, हीरे सब जगह फैले हुए थे। मानो कि इसकी कोई कोई फैक्ट्री हो, 10,000 फैक्ट्री हो, जो एक के बाद एक बनाते जा रहे हो। इतना सारा सोना, हर एक व्यक्ति के ऊपर इतना सोना, गहने और हीरे मोती। यहां तक कि सारे पशु भी थे, हाथी, घोड़े, गाय, सबको सोने के आभूषण, शुद्ध सोना। यहां तक कि रस्ते में भी, यह हम देखते हैं कि जो भी डेकोरेशन वगैरह होते थे वो सब हीरे जवाहरात के होते थे। इस प्रकार से ऐसा ऐश्वर्य जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा ऐश्वर्य रावण जैसे असुर प्रवृत्ति के राजा के राज्य में था। तो सोच लीजिए अयोध्या में कैसे हुआ होगा। सोच लीजिए कि जो धार्मिक राजाएं थे उनके राज्य में कैसे ऐश्वर्य हुआ होगा। लेकिन ऐश्वर्य क्यों था? ऐश्वर्य इसलिए था कि वहां लोग सामाजिक, समाज जो है धार्मिक था। रावण ने भी अपने ऐश्वर्य को, अपने शक्ति को तपस्या के बल पे प्राप्त किया। जब हनुमान भी लंका गए, उन्होंने रावण के ऐश्वर्य को देखा और खुद स्वयं रावण को देखा तो चकाचौंध हो गए कि ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा शान, ऐसी मस्ती। सोचा कि केवल ये रावण की तपस्या के बल पे हुआ है। वास्तव में रावण तो विद्वान थे शास्त्रों में, हाँ शास्त्रों का आचरण नहीं कर रहे थे वो दूसरी बात है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान तो था और बहुत लंबी तपस्या की थी उन्होंने। रावण के तपस्या के बल पे उनको ये शक्ति प्रदान हो गई जिससे कि वो देवताओं को भी हरा सके। कुबेर को भी हरा कर, कुबेर का सारा जो राज छीन कर, यहां तक कि कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, कुबेर का लंका ही छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, कुबेर को भगा दिया वहां से, इंद्र को पराजित कर दिया युद्ध में। ऐसी शक्ति, कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। ये शक्ति उनको केवल अपने तपस्या के बल पे प्राप्त हुई। तो देखिए, अगर कोई शक्तिशाली बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त है। शक्तिशाली आदमी बन सकता है असुरी तपस्या करने के बाद भी। इसे बड़े बड़े जो असुर हुए हैं, तपस्वी क्यों हुए? तपस्या की इन्होंने। गीता में भगवान बताते हैं कि तीन प्रकार के तपस्या होते हैं, सत्वगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या और तमोगुण की तपस्या। तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तमोगुण की तपस्या करते हैं। तपस्या तो तपस्या है, तपस्या का कोई फल तो मिलना चाहिए, तो उनको मिल जाता है।
तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग थे, बड़े बड़े असुर, उनको भी फल प्राप्त हुए, जैसे ऐश्वर्य इत्यादि, लेकिन बहुत कम समय तक रहता है। इसी प्रकार से हनुमान भी सोच रहे थे कि ये रावण वास्तव में सारे ब्रह्मांड का हमेशा के लिए राज्य करने के लिए योग्य है, लेकिन इतना ही है कि इतना पाप कर रहा है ये कि अपने तपस्या के बल पे जो भी खड़ा कर दिया है उसने, अभी बहुत कम समय की बात है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, ज्यादा समय रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो धार्मिक राजाएं थे, जो समाज भी धार्मिक था, तो उनका ऐश्वर्य कितना ज्यादा हुआ होगा और कितने और लंबे समय तक रहा होगा। तो सारे जो वंश हुए हैं, जिनका वर्णन हम भागवत के पन्नों में पढ़ते हैं, विशेष करके 9वें स्कंद में भी इतने राजाओं का वर्णन पढ़ते हैं, इतने साल तक उनका ऐश्वर्य बना रहा। ऐसा नहीं कि रावण की तरह एक पीढ़ी के बाद में सब खत्म हो गया, नहीं, इतने पीढ़ियों तक ये ऐश्वर्य चलता गया। क्यों? क्योंकि धार्मिकता बनी रही और इसीलिए ऐश्वर्य रहा। जहां धार्मिकता रहती है वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन जहां धार्मिकता नष्ट हो जाती है, भले वहां अभी लगे कि ऐश्वर्य बहुत है, जैसे पाश्चात्य देशों में अभी नजर आ रहा है, लेकिन बहुत कम समय की बात है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ऐश्वर्य स्वर्ग लोक में भी क्यों रहा है? क्योंकि वहां लोग भक्त हैं, भले भोग कर रहे हो लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए टिक पा रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐश्वर्य उत्तानुपाद महाराज के दरबार में कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और यहां पे वर्णन है उनके महल का, राज दरबार का, राजमहल का, जहां पर सुंदर बगीचे थे, उद्यानानि च रम्याणि, ये जो उद्यान बगीचे, सुंदर सुंदर जगह, हम इसी तरह के बगीचे गोकुलधाम में भी करना चाहते हैं, क्योंकि 11वें स्कंद में भगवान भी बताते हैं पुष्पोद्यानानि रम्याणि, वो कहते हैं कि ऐसे रम्य पुष्पोद्यान करना चाहिए। इसी श्लोक को हमने हमारे ब्रोशर में भी लगाया हुआ है, उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं। तो सुंदर सुंदर पुष्प किससे पूर्ण बगीचे, जो कि कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण के पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि महाराज जयसिंह और जो जयपुर के राजा हुआ करते थे, वो सब कृष्ण के भक्त थे, और उन्होंने अपने राज के महल के भीतर ही, सीमा के भीतर ही गोविंद जी का मंदिर स्थापित किया। वो चाहते थे कि हर दिन सुबह में कार्य करने के पहले गोविंद जी का दर्शन ले लो, और महल में ही हो तो सबसे अच्छी बात है, घर के ही जैसे हो गए। और आज तक ये प्रथा यहां पर है कि अपने दिन के कार्य शुरू करने के पहले जो भी व्यापारी वगैरह होते हैं वो आके गोविंद जी का दर्शन करते हैं और फिर अपनी जगह चले जाते हैं, जो भी काम करना हो। तो सारे वहां महल में हम देखते हैं कि सुंदर बगीचे वगैरह हैं, इतना सौंदर्य ऐश्वर्य है, लेकिन क्यों? केवल गोविंद जी के सेवा के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी जो बनाना है सब कृष्ण की सेवा के लिए, जो भी ऐश्वर्य आएगा कृष्ण की सेवा में लगाना है। लेकिन अगर कृष्ण से अलग हो गए, कृष्ण को केंद्र से हटा दिया, तो जो भी ऐश्वर्य सब कुछ आएगा सब रावण की लंका की तरह खत्म हो जाएगा। तो पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे सब धार्मिक थे, और उनकी पुण्य की स्टॉक जो थी वो काफी थी, इसलिए ऐसा ऐश्वर्य अपने महल में वो बना के रख पाए। तो यहां पे बताया जाता कि सुंदर सुंदर बगीचे थे, और ये वृक्ष जो है अमर द्रुमय ही, द्रुमय मतलब वृक्ष, अमर मतलब वहां से लिया आए, कहां? अमर लोक से। अमर लोक मतलब स्वर्ग लोक, जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार में कोई भी ग्रह अमर नहीं है, ध्रुव लोक छोड़कर,
यहां ये खुद वैकुंठ लोक है,
तो उसको छोड़कर और कोई भी लोक या ग्रह ये भौतिक संसार में अमर नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़कर यह संसार में अमर नहीं है। लेकिन फिर भी यह अमर द्रुमही शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि अमर शब्द से हम यह समझ सकते हैं कि वहां उनकी आयु बहुत लंबी होती है। मतलब हमारे जीवन की अवधि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमर के बराबर ही है, लेकिन अमर नहीं है। कितनी आयु होती है उनकी? हमारे जो 6 महीने होते हैं उनके 12 घंटे, मतलब उनका 1 दिवस, और हमारे बाकी 6 महीने उनके रात के 12 घंटे, तो उनके 24 घंटे जो है हमारा पूरा 1 दिवस, जो उनका 1 साल। तो इस प्रकार से उनके वो 10,000 साल जीते हैं। तो सोचिए कितनी लंबी आयु हो गई, और इतने साल जीते हैं और ऐश्वर्य भोग करते हैं, बहुत ज्यादा भोग करते हैं। तो ऐसे लंबी आयु जब हम देखते हैं तो हमारे दृष्टिकोण से ये प्राय अमर के बराबर है, इसलिए यहां पर अमरत्रुमयी लिखा गया है। और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां के देवी देवता गण और जो निवासी हैं उनकी इतनी लंबी आयु होती है, तो ये स्वाभाविक है कि वहां के जो वृक्ष हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी तो बहुत लंबे उम्र वाले होंगे। तो उसी प्रकार से ये जो वृक्ष हैं वहां के, महाराज उत्तानुपात के राजमहल में लाए गए थे, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान ने भी पारिजात का वृक्ष सत्यभामा के अनुसार, के इच्छा के अनुसार स्वर्गलोक से लाया था। आप तो जानते हैं कि जब कृष्ण भगवान पृथ्वीलोक पर अवतार लेते हैं तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, और जो भी भूमिका में रहते हैं उसी भूमिका को निभाते हैं। अगर वो जब वो बाल लीला कर रहे थे तो एक साधारण बालक की तरह वो व्यवहार कर रहे थे। जब वो एक राजा थे द्वारका में तो राजा की तरह युद्ध किया करते थे। जब ग्वाल बाल का रूप धारण करते थे, जो कि उनका आदि रूप है, जो कि उनकी आदि भूमिका है, तो ग्वाल बाल साधारण ग्वाल बाल की तरह गायों को चराने के लिए ले जाते थे, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ कुश्ती किया करते थे। और जब द्वारका में वो गृहस्थ बने तो एक प्रामाणिक गृहस्थ की तरह रहने लगे। सुबह उठकर मंत्रों का उच्चारण करना, वेदों का पाठ करना, दान देना, यज्ञ करना, मंदिरों में जाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ऐसे सब किया करते थे। तो गृहस्थी में अपने पत्नी का देखभाल करना, वो भी तो करते थे। तो इस प्रकार से एक बार ऐसे हुआ कि जब इंद्र की शिकायत आई कि हमें ये भौमासुर नाम का जो असुर है, जो आप ही का पुत्र है वास्तव में, ये हमें बहुत तंग कर रहा है, हैरान कर रहा है। ये भौमासुर वास्तव में भगवान का पुत्र है, और उसकी माता कौन है? पृथ्वी देवी। जब वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया गर्भोदक सागर में से हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात, तो जहां उन्होंने स्पर्श किया वहां से वो वरह क्षेत्र कहलाता है, तो भौमासुर नाम का पुत्र या संतान उत्पन्न हुआ। तो भौमासुर हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, लेकिन फिर भी असुर बन गया। कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं कि अरे हमारे बच्चे वो भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं, अरे कम से कम असुर तो नहीं है ना, भौमासुर जैसा तो नहीं है ना। और कभी कभी ऐसे होता है कि माता पिता असुर की तरह हो जाते हैं और बच्चे प्रहलाद की तरह हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार के अनुभव हमारे भक्त समाज में देखा जाता है। तो खैर भौमासुर तो इतना उत्पात पैदा कर रहे थे हर जगह पे, तो इंद्र खुद उनको संभाल नहीं पाए, तो कृष्ण के पास आया द्वारका में कि कुछ कीजिए। तो कृष्ण कहा ठीक है, तो अपने साथ में सत्यभामा को ले गए युद्ध में। हम ऐसा अक्सर संसार में नहीं देखते हैं, जब कोई युद्ध होता है तो कोई अपने पत्नी को रानी को साथ में नहीं ले जाता, रख देते हैं। तो लेकिन कृष्ण भगवान ले गए साथ में, सोचा कि चलो थोड़ा कुछ मनोरंजन हो जाएगा, इधर उधर घुमाएंगे, थोड़ा साइट सीइंग हो जाएगा। और उधर गए, भौमासुर का आसानी से वध कर दिया और फिर अमरावती गए। हमारे महाराष्ट्र वाले अमरावती नहीं, जो स्वर्गलोक की अमरावती है, स्वर्गलोक में इंद्र की राजधानी का नाम है अमरावती, इंद्रपुरी। तो वहां पर गए इंद्र को खबर सुनाने के लिए कि इंद्र को जरा बताएं कि भाई यह आपका शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा था, उसको मैंने खत्म कर दिया है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, उनको संदेश देकर चले जाएं, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इधर से आप द्वारका से गए, भौमासुर का वध किया, पृथ्वी से अमरावती गए स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक से फिर से आए, आना जाना उनको कोई रिजर्वेशन का चक्कर नहीं है, ट्रेन का फ्लाइट का कोई चक्कर नहीं है, सीधा जैसे चाहे वैसे गरुड़ के ऊपर सवार होकर बस चले जाते हैं, जैसे इच्छा करते हैं वैसे घूमते फिरते हैं। साधारण जो लोग हैं उस सतयुग में, त्रेता युग में भी जाते थे, द्वापर युग में भी अर्जुन भी गए और वहां के निवासी भी आया जाया करते थे, तो कृष्ण भगवान क्यों नहीं जा सकते? तो सत्यभामा को लेकर गए। इंद्र बड़े खुश हुए, उनके पैर छुआ, प्रणाम किया, बहुत धन्यवाद अर्पण किया, हम कितने आभारी हैं, हमारे शत्रु को आपने खत्म कर दिया है। और वहां से निकलते निकलते इंद्रपुरी या अमरावती के बगीचों को देखा, इतने सुंदर बगीचे, नंदन कानन वन इत्यादि। तो ये सब देखकर सत्यभामा के हृदय में थोड़ी लालसा उत्पन्न हुई। तो जैसे अक्सर संसार में भी देखते हैं, जब पति पत्नी किसी और के घर में जाते हैं तो बाद में पत्नी आके पति से कहेगी, उनके घर में ये टीवी था, हमारे घर में क्यों नहीं है, ऐसे हमने सुना है, हमें अनुभव नहीं है। तो ऐसे कभी कभी पति शिकायत करते हैं, तो उनके घर में है तो हमें भी ला कर दे दो। तो खैर सत्यभामा भी एक भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य उनके पत्नी हैं द्वारका में, गोलोक में। तो उन्होंने कहा, अरे ये सुंदर पारिजात वृक्ष इतना सुंदर, हमें भी चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, ये तो इंद्र का है ना, रहने दो इंद्र के पास, हम तो संतुष्ट हैं, द्वारका में किस चीज की कमी है। तो ऐसे कभी कभी होता है, पर नहीं, मुझे चाहिए। तो कृष्ण भगवान भी एक पति का पति की भूमिका निभा रहे हैं, तो पत्नी को तो संतुष्ट करना ही है, नहीं तो एक युद्ध हो गया भौमासुर का जो जीत सके, लेकिन अभी और एक युद्ध हो जाएगा, वो तो जीत नहीं पाएंगे, वो जानते हैं। तो सोचे चलो भाई ये तो युद्ध है, ज्यादा भयंकर होता है, तो इसको संतुष्ट करना, हमारी पत्नी को संतुष्ट करना ज्यादा जरूरी है। जैसे एक साधारण संसार का पति कैसे सोचता है, वैसे भी कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है, जो श्रद्धा है, जिनको श्रद्धा है, वही केवल ये लीलाओं को समझ सकते हैं। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, अरे कृष्ण तो एक साधारण ग्वाल बाल है, अरे कृष्ण तो एक पॉलिटिशियन थे, अरे कृष्ण तो केवल एक राजा थे, कृष्ण तो केवल एक साधारण ऐसे व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीला ऐसे देखते हैं, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह है, कार्य करते हैं, तो सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे ही है, आखिर हमारे जैसे उनका रहन सहन रहा, हमारे बीच में मनुष्य समाज में ही उठते बैठते रहे, चलते फिरते रहे, खाते पीते रहे, तो कौन से बड़े आदमी है वो। तो इस प्रकार से कृष्ण का ठीक है मैं ले आता हूं। तो एक फूल ले आए। तो सत्यभामा ने क्या कहा, फूल नहीं, सारा वृक्ष चाहिए मुझे। अरे वृक्ष का वृक्ष ठीक है, तो वृक्ष का वृक्ष उठा ले आए। अब देखिए कि स्वर्गलोक में रहने से कैसे व्यक्ति एक प्रकार के नशे में आ जाता है। इंद्र ने सोचा, अरे मेरे नंदन कानन से वन से कोई पारिजात का वृक्ष उठा के ले जा रहा है, ये तो केवल स्वर्ग लोक में होना चाहिए, पृथ्वी लोक में पारिजात होना ही नहीं चाहिए, तो और वो भी मेरे अनुमति के बिना कैसे ले जा सकते हैं। देखिए कितना नशा हुआ होगा कि कृष्ण जो कि भगवान है, फिलहाल जिनके थोड़े ही समय पहले वो कृष्ण के पास चरणों में गए थे, मुझे बचाइए बचाइए, कृष्ण ने बचा लिया, उनको खुशखबर सुनाने आए, लेकिन दो मिनट में भूल गए। अभी सोच रहे हैं कि अरे कृष्ण मेरे से कैसे वृक्ष ले जा सकते हैं। और उसके बाद में उन्होंने चैलेंज किया कृष्ण को कि आप नहीं ले जा सकते। कृष्ण सोच रहे, अरे अभी मैंने इसको मृत्यु से बचाया, इसके शत्रु की हत्या कर दी, और एक वृक्ष ले जा रहा हूं, और अभी सामने आके सीना तान कर खड़ा है और बोल रहा है कि नहीं ले जा सकते। तो कृष्ण का ठीक है, चलो युद्ध करें। और इंद्र भी इतने मूर्ख, अपने इतने उन्मत्त हो गए थे अपने नशे में, ऐश्वर्य और धन के नशे में, कि उन्होंने युद्ध भी शुरू कर दिया। तो कृष्ण को क्या कठिन है इंद्र को पराजित करना युद्ध में? गोवर्धन की लीला जानते हैं, इंद्र गोवर्धन की लीला भी भूल गए। देखिए इतना सब हुआ, गोवर्धन थोड़े साल पहले जो हुआ था वो तो भूल ही गए। तो ये है स्वर्गलोक की नशा, इसलिए स्वर्गलोक में जाने की इच्छा अभिलाषा कभी नहीं रखनी चाहिए। स्वर्गलोक में जाएंगे तो बहुत कठिन होता है भक्ति करना, नरक में जाएंगे तो बहुत कठिन है क्योंकि वहां इतना कष्ट है, और स्वर्गलोक में जाएंगे फिर भी बहुत कठिन है क्योंकि वहां इतना ऐश्वर्य है, वहां नशा हो जाता है आदमी को। जब आदमी को धन का नशा चढ़ जाता है तो वो नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। केवल धन जब आदमी से निकल जाएगा तब आदमी नम्र बन जाता है। तो खैर कृष्ण ने देखा कि ये तो नशा बड़ा खतरनाक है, इतने बार मैंने याद दिलाया है और इसे ठीक कर दिया है, लेकिन फिर बार बार इंद्र ऐसे घमंडी होते जा रहे हैं। तो उनको हरा दिया, अच्छा सबक सिखाया इंद्र को, और कहा कि देखो आइंदा ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इंद्र ने के होश फिर से ठिकाने आ गए। और फिर भगवान कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष लाकर उन सत्यभामा के महल में उन्होंने लगा दिया। जैसे आप जानते हैं कृष्ण के द्वारका में 16,108 रानियां थी, और हर एक रानी के लिए अलग अलग महल, और हर एक महल में ऐसे ही उद्यानानि च रम्याणि, ऐसे एकदम सुंदर सुंदर बगीचे, फूल वगैरह, वृक्ष। तो सत्यभामा के जो बगीचे में, महल के बगीचे में ये लगा दिया। और उसके बाद में वहां से, उस समय से पृथ्वीलोक पर पारिजात की शुरुआत हुई, फिर वहां से अलग अलग जगह हुई। आज हमारे जुहू के मंदिर में भी, मंदिर के भीतर जहां तुलसी महारानी है भगवान के विग्रह के बिल्कुल सामने जो आंगन है, उस आंगन में आप दो वृक्ष देखेंगे, एक है बेल, बिलवा, बेल का वृक्ष, और दूसरा है पारिजात का वृक्ष। लेकिन वो पारिजात आजकल कलयुग का पारिजात है, तो इसमें कुछ इतना खास ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, है बहुत सुंदर। तो उस समय भी हम देखते हैं उत्तानपाद महाराज के समय ऐसे स्वर्ग लोक से लोगों का भी आना जाना होता था, और वृक्ष पक्षी इत्यादि भी यहां वहां ले जाया करते थे। तो उनके इसमें महल में के बगीचे में ऐसे स्वर्गलोक के वृक्ष हुआ करते थे। वास्तव में आजकल भी जो हम कई बार फल वगैरह खाते हैं वो स्वर्गलोक के माने जाते हैं। कोई उदाहरण, स्वर्गलोक का फल कौन सा है जो हम खाते हैं? आम, आम को एक स्वर्गलोक का फल माना जाता है। और वहां स्वर्गलोक ऊपर के लोकों में अमरस की नदी बहती है, अलग अलग प्रकार की नदियां होती हैं। भागवत में वर्णन है, जैसे यहाँ पे नमकीन पानी का जो सागर है वैसे कहीं और दूध का सागर है, तो कहीं घी का सागर है, कहीं तेल का सागर है, कहीं गुलाब जल का सागर है, अलग अलग प्रकार के सागर होते हैं। केवल ऐसे नमक वाला पानी वाला सागर नहीं होता, ये केवल हमारे पृथ्वी लोक में है बस, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग है। उसी प्रकार से नदियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जम्बू द्वीप में ऐसा वर्णन आता है कि बड़े बड़े आम होते हैं और वृक्ष मीलों मीलों ऊंचे होते हैं। हमारे यहां सबसे बड़े वृक्ष कितने ऊंचे होते हैं? थोड़े 20-50 फुट से ज्यादा नहीं होते, लेकिन वहां पर मीलों दूर जम्बूद्वीप में और इतने बड़े बड़े आम के वृक्ष, आम के फल, और कभी कभी पक जाते हैं तो गिर जाते हैं जमीन पर और गिर कर फूट जाते हैं और फूट कर अपना सारा रस जो है बहने लगता है। और इतने सारे आम है वहां, इतना बड़ा वृक्ष है कि आम का रस जो उनसे निकलता है वो नदी बन जाती है। तो इस प्रकार से जो चाहे वहां आम रस जाके पी सकते हैं। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा इंद्रिय भोग की सुविधा देखिए। अगर यहां पे कोई आमरस की नदी होती तो क्या होता, पहले जाकर लोग अपने डब्बे वब्बे लेकर उसको पैक करके ले जाते है ना। आदमी इस पृथ्वी लोग का ऐसा है, पहले जितना से देखो। लेकिन स्वर्ग लोग के निवासी ऐसे नहीं है, बहुत कुछ है उनको, जितना चाहिए उतना लेते हैं, वैसे को वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग जितना चाहे उतना पकड़ के रखना चाहते हैं। तो ऐसा है, आजकल भी आम जो है ये स्वर्ग लोग का फल हम कभी कभी चखते हैं, जो मजा आता है आम में शायद उतने फलों में मजा नहीं आता। तो इस प्रकार से स्वर्ग लोक के सारे ऐश्वर्य जो हैं वो पृथ्वी लोक पर भी हुआ करते थे। देखिए सत्ययुग में स्वर्ग में और पृथ्वी में ज्यादा अंतर नहीं था, जैसे स्वर्ग लोक में वातावरण था वैसे ही पृथ्वी लोक में था, और आना जाना बहुत होता था। उस समय कोई वर्ण नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थे, सभी एक वर्ण के थे। क्या नाम था? नहीं, हंस, उनका नाम था हंस, एक ही वर्ण हुआ करता था। त्रेता युग में ये सब धीरे 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 से शुरू हुआ, सत्ययुग के अंत में समझिए। तो इस प्रकार से उस समय ये सत स्वर्ग लोक के समान ही था, सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, भोग में, धार्मिकता में। लेकिन धीरे धीरे जैसे चार युग बढ़ते गए, त्रेता, त्रेता से द्वापर, वो कम होते गए। जो भेद है स्वर्ग में और पृथ्वी में वो बढ़ता गया। और अभी कलयुग में ऐसा है, भेद इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी लोक में रहने वाले लोग विश्वास भी नहीं करते कि स्वर्ग ऐसे नाम की चीज कोई है, या स्वर्ग है तो कहां है, श्रद्धा नहीं है। और हमारी दृष्टि और हमारा रहन सहन का ढंग इतना स्थूल हो गया है कि स्वर्ग लोक के सूक्ष्मता को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए देवी देवता गण भी अदृश्य रहते हैं कलयुग में, कलयुग के निवासियों के सामने अदृश्य रहते हैं। अगर चाहें तो अपने आप को वो प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि कलयुग के लोगों में श्रद्धा नहीं है, वो योग्य नहीं है। भगवान को योग्य देखने के लिए योग्य तो है ही नहीं, लेकिन देवी देवताओं को देखने के लिए भी योग्य नहीं है, ऊपर के लोगों के निवासियों के लिए भी देखने के लिए योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो अंतर है स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में, वो जैसे युग बढ़ते जाते हैं, बीतते जाते हैं, वैसे ही अंतर बढ़ता रहता है। लेकिन जिस समय की बात का वर्णन यहां पे हो रहा है, उस समय बहुत कम अंतर था। इसलिए अगर स्वर्ग लोक के वृक्ष भी कोई यहां है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आना जाना ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक हुआ करता था और आसानी से लोग जाते थे, उनको कोई ऐसी बात नहीं थी कि स्वर्ग लोक कहाँ है। ऐसे अगर हम लोग यहाँ कहें कि बम्बई यहाँ है, क्या सबूत है? बम्बई आना जाना कितने लोगों का होता है, तो एक स्वाभाविक बात है कि बम्बई शहर है, दिल्ली शहर है। उसी प्रकार से उस जमाने के पृथ्वी के निवासियों के लिए स्वर्ग लोक की बात थी, कोई संदेह की बात नहीं थी। तो यहां हम देखते हैं कि ऐसे वृक्ष में, ऐसे बगीचे में सुंदर सुंदर पक्षियां सुंदर गीत गाते थे, मधुर गीत गा रहे थे। और जो भौरे हैं, जो मदमत थे, गुंजार करते हुए इधर उधर घूम रहे थे, एक बहुत ही रम्य मधुर वातावरण। और इसमें ऐसे वातावरण में राजा महाराजा ऐश किया करते थे उस जमाने के। तो ऐसे ऐश्वर्य से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं ऐसे ऐश्वर्य और भोग की अभिलाषा करनी चाहिए। हमारे जो भावना क्या होनी चाहिए, ये सब ऐश्वर्य जो है ये तो गोलोक वृंदावन के मधुर कृष्ण प्रेम के तुलना से मिट्टी के बराबर है। अगर आपको कोई अच्छा सा आपस आम देगा, साथ में रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह देगा, और दूसरी ओर मिट्टी है तो आप कोई आदमी मिट्टी खाएगा? कोई अपने जो अपने होश में है वो ये सब छोड़कर मिट्टी खाएगा? तो उसी प्रकार से जो आदमी अपने होश में है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो भगवान के कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद को त्याग कर वो ये स्वर्गलोक तक की ऐश्वर्य की मिट्टी को कभी चखने का इच्छुक नहीं रहेगा। कितना भी बड़ा ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा, सोचेगा ये मिट्टी के बराबर है। विषया विनिवर्तन्ति निराहरस देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ते ऊंचे दृष्टि ऊंचे स्वाद की बात है। कृष्ण भक्ति का स्वाद, कृष्ण भक्ति का चस्का जब लग जाएगा आदमी को, तब सारे दूसरे चीजें भूल जाएगा, दूसरी चीजें तुच्छ लगेंगी। इसलिए हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संसार के ऐश्वर्य से कोई आकर्षण न हो, केवल कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए हमारे हृदय में इच्छा रहे और सारे अभिलाषाएं खत्म हो जाएं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की थी शिक्षाष्टकम में, वैसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयी। हे भगवान, मैं कोई धन ऐश्वर्य नहीं चाहता, मैं सुंदर स्त्री अनुयायी नहीं चाहता, बड़ा घर गाड़ी बंगला नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं? जन्म जन्मांतर आपकी सेवा उपलब्ध होती रहे, मुझे सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे, कभी आपके चरण कुमलों से दूर न हो जाऊं, आपके भक्तों से दूर न हो जाऊं, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। इस भावना से हमारी भक्ति हमको करनी चाहिए। भक्ति करते करते भी कभी कभी ऐश्वर्य आ जाता है, भक्ति करते करते कभी अनुयायी आ जाते हैं, भक्ति करते करते कभी पद आ जाता है, सम्मान मिलता है, कभी लोगों के ऊपर वश करने का अवसर मिलता है। तो इससे हमें इन चीजों से बहुत होशियार खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से अगर हमें अटक गए तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा हमें नम्र रहना चाहिए, और भक्तों के समाज में भी या बाहर के समाज में कभी भी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल नम्र रहकर अमाने न मान देना कीर्तने सदा हरि, ऐसे नम्र रहकर भक्तों के एक दूसरे की सेवा करते हुए, प्रेम का आदान प्रदान करते हुए कृष्ण की सेवा में हमें मस्त रहना चाहिए, या फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अक्षय धना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Sab zor se boliye sab zor se gaiye
Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari
Hari Hari
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare.